صفحہ نمبر 113، مزید برآں آپ ہمارا کام بھی تو کیا ہی کریں گے۔ شیخ نور محمد نے اپنے عزیز کو یہ بات سنانے کے بعد کہا کہ اگرچہ ملازم کا تعلق تو ڈپٹی صاحب سے ختم ہو گیا، مگر دوستانہ روابط ان کی وفات تک قائم رہے۔ شیخ نور محمد ملازم چھوڑ کر دکان پر برقعوں کی ٹوپیاں یا کلہ سینے لگے، اور یہ ٹوپیاں بے حد مقبول ہیں، پھر انہوں نے دھن سے بنوا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں شیخ عطا محمد کی شادی کشمیری رٹھوروں کے خاندان کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ شیخ عطا محمد کے سسرال والوں کا تعلق چونکہ فوج سے تھا، اس لیے ان کی وساست سے شیخ اور شیخ عطا محمد کے اپنے قد و قدامت کے سبب وہ رسالے میں بھرتی ہو گئے۔ یوں خاندان کے مالی حالات رفتہ رفتہ بہتر ہونے لگے۔ اخبار خود بیان کرتے ہیں، اس زمانے میں معمولی دھسوں کی قیمت 2 روپے فی دھسا سے زیادہ نہ تھی۔ والد ماجد نے کوئی 200-400 دھسے تیار کیے تو قدرت خدا کی ایسی ہوئی کہ سب کے سب اچھے داموں بک گئے۔ حالانکہ فی دھسا 8 آنے سے زیادہ لاگت نہ آئی تھی، 200-400 دھسے فروخت ہو گئے تو کافی روپیہ جمع ہو گیا۔ بس یہ ابتدا تھی پھر ہمارے دن پھرنے کی۔ پھر بھائی صاحب بھی ملازم ہو گئے۔ شیخ نور محمد کاروبار میں دلچسپی نہ رکھتے تھے، اس لیے روٹی کمانے کے دھندے سے فراغت کے بعد ان کا بیشتر وقت یا تو علماء و فضلاء کی صحبت میں گزرتا تھا یا یاد الہی میں غور و فکر کی عادت کے علاوہ انہیں تصوف سے بھی بے حد شغف تھا۔ یہاں تک کہ محی الدین ابن عربی کی تصانیف فتوحات مکیہ اور فسوس الحکم کا درس ان کے گھر پر ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اقبال خود تحریر کرتے ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کوئی بدزنی نہیں، میرے والد کو فتوحات اور فسوس سے کمال تو فل رہا ہے، اور 4 برس کی عمر سے میرے کانوں میں ان کا نام اور ان کی تعلیم پڑھنی شروع ہوئی۔ برسوں تک ان دونوں کتابوں کا درس ہمارے گھر میں رہا۔ وہ بچپن کے دنوں میں مجھے ان مسائل کی سمجھ نہ تھی، تاہم محفل درس میں ہر روز شریک ہوتا۔ بعد میں جب عربی سیکھی تو کچھ کچھ خود بھی پڑھنے لگا، اور جون جون علم اور تجربہ بڑھتا گیا میرا شوق اور واقفیت زیادہ ہوتی گئی۔ شیخ نور محمد ابن عربی کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے، ان کی شخصیت پر وجودی تصوف کا اس قدر اثر تھا، اس کا اظہار اقبال نے اپنی ایک بات کی تحریر میں یوں کیا ہے، 1000 کتب خانے ایک طرف اور باپ کی نگاہ شفقت ایک طرف، اسی واسطے تو جب کبھی موقع ملتا ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور پہاڑ پر جانے کی بجائے ان کی گرمی صحبت سے مستفید ہوتا ہوں۔ پرسوں شام کھانا کھا رہے تھے اور کسی عزیز کا ذکر کر رہے تھے جس کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ دوران گفتگو کہنے لگے، مجھے معلوم نہیں بندہ اپنے رب سے کب کا بچھڑا ہوا ہے۔ اس خیال سے اس قدر متاثر ہوئے کہ تقریباً بے ہوش ہو گئے، اور رات کے 10-11 بجے تک یہی حالت رہی۔ یہ خاموش لیکچر ہے جو پیران مشرق سے ہی مل سکتے ہیں، یورپ کی درسگاہوں میں ان کا نشان نہیں۔ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ سید میر حسن مسلمانوں میں جدید تعلیم مقبول کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ وہ سر سید احمد خان کو 1873 سے جانتے تھے اور مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شامل ہوتے تھے۔ اقبال کے سال پیدائش یعنی 1877 میں علی گڑھ کالج کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں وہ بھی شامل شریک ہوئے۔ صفحہ نمبر 115، اس مرحلے میں مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے سلسلہ میں سر سید احمد خان 1817-1898 کی تحریک اور خدمات کا ذکر شامل کرنا اشد ضروری ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ برصغیر کی انگریزی حکومت مسلمانوں کی سخت مخالفت تھی، لیکن سر سید کی سعی و کوشش سے مسلمانوں کے ساتھ سرکار برطانیہ کا رویہ رفتہ رفتہ بدلنا شروع ہوا۔ سر سید نے انگریز حاکموں کی ہمدردی حاصل کرنے کی خاطر انہیں یقین دلایا کہ مسلمان حکومت کے وفادار ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ بدلتے ہوئے حالات میں جب تک وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا زاویہ نگاہ نہ بدلیں گے، ان کے من حیث الملت مکمل تباہی لازمی ہے۔ انگریزی حکومت کو مسلمانوں کی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے سر سید نے 1858 میں اپنا کتابچہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا۔ 1860 اور 1861 میں انہوں نے ہند کے وفادار مسلمان کے موضوع پر تحریروں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ 1863 میں انہوں نے تابعین الکلام نامکمل تفسیر انجیل شائع کی۔ 1868 میں اقام تعام اہل کتاب یعنی اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے اصول لکھی گئی۔ 1872 میں ڈاکٹر ہنٹر کی انگریزی کتاب ہندی مسلمان پر ایک تبصرہ شائع کیا۔ اس تحریروں کے علاوہ انہوں نے کئی معذرت خوانہ اور مناظرانہ کتب لکھی، مثلا 1870 میں خطبات الاحمدیہ سیرت طیبہ پر مضامین کا مجموعہ شائع کی، تفسیر قرآن مسمى، تفسیر احمد نامکمل کی 6 جلدیں 1880 اور 1895 کے درمیان طبع کرائیں۔ ان کے تقاریر، مقالات اور مضامین کی اشاعت بھی جاری رہی۔ اسباب بغاوت ہند میں سر سید نے اس الزام کی تردید کی کہ فوجی سرکشی کے ذمہ دار مسلمان تھے۔ ان کی رائے میں بغاوت کے کئی اسباب تھے اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں سبب فوج کا غلط انتظام تھا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ وائسرائے کی قانون ساز کونسل میں ہندوستانیوں کو شریک کیا جائے، نیز انہی اعلیٰ انتظامی اور اعلیٰ عدالتی عہدوں پر فائز کیا جائے۔ ہند کے وفادار مسلمان سلسلہ تحریر میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انگریز عیسائی ہونے کے بنا پر اہل کتاب ہیں، اس لیے مسلمان ان کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ تبیین کلام مسلمانوں کو عیسائی مذہب کے اصول سے روشناس کرانے کی خاطر تحریر کی گئی، تاکہ عیسائی مشینریوں اور مبلغوں کے ساتھ بحث و مناظرہ کرنے سے بیشتر وہ ان کے مذہبی نقطہ نگاہ سے باخبر ہوں۔ کتابچہ احکام اہل کتاب مسلمانوں اور انگریزوں میں معاشرتی رابطہ کے قیام و فروغ کے پیش نظر شائع کیا گیا۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ مسلمان اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں، بشرطیہ وہ حرام ایشیا کو ہاتھ نہ لگائیں۔ سر سید نے ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر تبصرے میں سے یہ ثابت کیا ہے کہ سید احمد بریلوی کے حامیوں نے صرف سکھوں کے خلاف بغاوت اعلان جنگ کیا اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا۔ خطبات الاحمدیہ ایک معذرت خواہانہ تصنیف تھی جو سر سید نے قیام انگلستان کے دوران تحریر کی۔ اس میں میور کی انگریزی کتاب سیرت محمد میں درج الزامات کا جواب دیا گیا ہے۔ تفسیر قرآن کی اشاعت کا مقصد یہ ثابت کرتا تھا کہ اسلام عقلی اصولوں پر مبنی ایک سائنٹیفک مذہب ہے۔ سر سید نے جہاد کے موضوع پر بھی بہت کچھ لکھا۔ ان کی نگاہ میں جہاد مسلمانوں پر جہاریت کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے مدافعانہ صورت میں فرض ہے۔ سر سید نے ترکی یورپین لباس اختیار کیا اور انگریزوں میں سے میل جول بڑھایا۔ 1869 میں انگلستان گئے اور یورپ کی سیر بھی کی۔ آپ یورپی تمدن سے بڑے متاثر ہوئے۔ 1880 میں واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں کی دینی، اخلاقی، معاشرتی، ادبی، تعلیمی، اقتصادی اور سیاسی حالت کی اصلاح کے لیے اپنی تحریک شروع کی۔ اس اصلاحی تحریک کا سبب دراصل وہ تغیر تھا جو برصغیر میں انگریزی حکومت کے استحکام سے فروغ پذیر ہوا اور جس میں مسلمان ابھی گزرے تھے۔ دینیات کے میدان میں سر سید کی خاص طور پر قابل توجہ کتب 1870 اور 1898 کے درمیان شائع ہوئیں۔ ان میں تلقید کی بجائے تحقیق پر زور دیا گیا۔ الطاف حسین حالی حیات جوید میں لکھتے ہیں کہ سر سید کی ابتدائی دینی تعلیم نامکمل رہی اور اسی طرح انگریزی تعلیم سے بھی وہ پوری طرح آشنا نہ تھے، جس کے سبب مغربی تمدن کو صحیح طور پر سمجھنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ حالی کے نزدیک یہ کیفیت بے حد مناسب تھی، کیونکہ اگر پرانے ماحول میں ان کی دینی تعلیم مکمل ہو گئی ہوتی تو تلقید کی زنجیر میں جکڑے رہتے اور اس ان میں نئے تمدن کے سمجھنے کے لیے تجسس پیدا نہ ہوتا۔ دوسری طرف یورپ کا تمدنی ارتقا جو اکثر ہندوستانی طلبہ کی نگاہوں کو اس قدر خیرہ کر دیتا تھا کہ وہ اپنے ملک کے تمدنی مستقبل سے مایوس ہو جاتے، انہیں یوں متاثر نہ کر سکا، یوں کیونکہ وہ نئے تمدن یا نئے مغربی تہذیب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ سر سید کو غالباً احساس تھا کہ جدید سائنس اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن جدید سائنس کا مطالعہ چونکہ وہ مسلمانوں کے لیے از حد ضروری خیال کرتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک اسلامی نظریات کی تشریح روایتی انداز میں کرنے کی بجائے نئے اور بدلے زاویہ نگاہ سے کرنا لازمی تھی۔ اس کے علاوہ عیسائی مشنریوں کے اسلام پر حملے نے انہیں مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ عیسائی مشنریوں کا استدلال عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک غیر عقلی مذہب ہے جو انسان کے تمدنی ارتقاء کا مخالف ہے۔ سر سید کی رائے میں جدید سائنس چونکہ تجربہ و مشاہد پر مبنی ہے، اس لیے درحیت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اگر جدید سائنس کی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی تشریح سے متعلق نیا علم الکلام ترتیب دیا جائے تو مسلمان اسلام کو زندگی کے جدید تقاضوں کے عین مطابق پائیں گے اور اسلام پر ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ان کے نزدیک اسلام ایک فطری یا نیچری مذہب تھا، کیونکہ جدید سائنس جن نتائج پر پہنچی تھی وہ قرآنی تعلیمات سے ہم آنگن تھے۔ یہ محض سر سید کے زاویہ نگاہ کی تبدیلی تھی، ان کے افکار میں کوئی جدت یا نئی بات نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے خیالات میں تاریخ فکر اسلامی کی کسی نہ کسی شخصیت کے نظریات سے مطابقت رکھتے تھے۔ سر سید کی عقلی اصولوں پر مبنی اسلام کی تشریح سے یہ تاثر لینا کہ وہ ہم عصر مغرب میں رائج فلسفہ، عقلیت، से मरगूब थे या दीनियात के मैदान में इनकी तहरीरें यूरोपी फलसफा अकलियत की बाजगश्त थीं दुरुस्त नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी मगरबी फलसफे का मुताला ना किया था। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इस्लाम के मतजल्ला मदरसा फिक्र के उल्मा से असर ज़रूर कबूल किया। इनकी राय में जब तक तहकीक का जज्बा मुसलमानों में जिंदा रहा, इनका अमल तख्लीकी था और साइंस या तरक्की इस्लाम से मुतसादम ना हुए, मगर जो ही तहकीक की जगह तकलीद ने ले ली, इस्लाम मुतहर्रक फ़ाल और तख्लीकी मजहब होने की बजाय एक जामद मजहब बना दिया गया और इसकी दीनियात में यहूदी ईसाई और हिंदू नज़रियात या मुकामी रस्म रवाजात गलत मलत हो गए। सर सैयद के मजहबी नज़रियात की नुयत ज़ाती थी, वो दूसरों पर अपने ज़ाती नज़रियात ठोंसना या इन्हीं अपना कायल करना ना चाहते थे। इनका मकसद अपनी ज़ेरे क़यादत किसी नए मजहबी फिरके की बुनियाद रखना था, इसलिए दीनियात के शोबा में इनकी तहरीक बेजान साबित हुई। सफ़ा नंबर 118। इस दौर के दीगर मुसल्लीन मसलन जस्टिस सैयद अमीर अली, मौलवी खुदा बख्श और मौलवी चिराग अली ने भी अपने अपने अंदाज में इस्लाम की तशरीह के लिए कुतब तहरीर की, मगर इनकी नवीयत मुदाफाना और माजरत ख्वाहाना थी। उल्मा ने सर सैयद के मजहबी नज़रियात की शदीद मुखालफत की। इस मुखालफत के सबब मुसलमानों में जदीद तलीम के फ़रोग़ के लिए इनकी तहरीक भी मुतासर हुई, क्योंकि आम तौर पर शुबा होने लगा कि मुसलमानों की नई नस्ल में जदीद तलीम के ज़रिए सर सैयद अपने मजहबी नज़रियात फैलाना चाहते हैं। लिहाजा मक्का के मुफ्तियों से इनके खिलाफ कुफर के फतवे हासिल करके शाया किया गया, इन्हीं धरियत और दज्जाल के अलकाब से पुकारा गया। एक मरतबा जान लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन सर सैयद अपने मजहबी नज़रियात पर कायम रहे। गलबन इसी बना पर उल्मा ने 1890 में लखनऊ में नदवातुल उल्मा और बाद में दारुल उलूम की बुनियाद रखी। सर सैयद की इखलाकी और माशर्ती इसलाह के लिए तारीख भी बरसगीर में सियासी तगैयर का नतीजा थी। राजा राम मोहन राय जैसे मुसल्लीन ने निसब सदी बेशतर अपने हम मजहबों को मगरबी तमद्दन की हमीयत का एहसास दिलाया था, और हिंदू अपने माशरे की तमीर नौ में मुसलमानों से तकरीबन 50 साल आगे निकल चुके थे। सर सैयद ने इंग्लिस्तान से वापसी के फौरन बाद अपना रसाला तहजीबुल इखलाक जारी किया, जिसमें मजामीन के जरिए वो और इनके हामी पढ़े लिखे मुसलमानों को तब्दीली का एहसास दिलाने या अपना जाविया निगाह बदलने की तरगीब देने लगे। सर सैयद की राय में बरसगीर में अंग्रेजी हुकूमत का क्याम मुस्लिम मुआशरा को लाहक तमाम आर्जों का वाहिद सबब ना था, बल्कि मुसलमानों की गुलामी और अबतरी का बाहिस। दरअसल इनकी जहालत जोफल अतकादी खुदगर्जी तकबर कदामत पसंदी और तंग नजरी के अलावा कुव्वत अमल और जज्बा कुव्वत का फुकदान का इंत नज़दीक किसी मिल्लत की अजमत का दारमदार और इसके अफराद के अंदाज़े फिक्र और अमल पर होता है, जो इनफरादी मुफाद की बजाय इज्तमाई मुफाद के हसूल के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। तहजीबुल इखलाक वसीउल नज़री अदल व इंसाफ अपनी मदद आप और तरक्की के असूलों की तशहीर करता था, मुसलमानों में अख़ुव्वत के जज्बा को फ़रोग़ का हामी था। इनमें जदीद तलीम और बिलखसूस साइंस की तलीम की तहसील की सख्त ज़रूरत पर जोर देता था। वो कदामत पसंदी गफलत बेकारी बद इखलाकी ज़ैफुल एतकादी गैर इस्लामी रस्म व रवाजात की पाबंदी और हर इस बात के खिलाफ था जो मुसलमानों को मतमदन दुनिया की निगाहों में रुसवा करने वाली हो। तहजीबुल इखलाक 12 साल तक जारी रहा। हाल ही की राय में इस मुसलमानों को मतवसतुल हाल तबका जो ना तो मुकम्मल तौर पर जाहिल था और ना जदीद तलीम के जेर असर रोशन ख्याल मुतासर हुआ, मगर उलमा इस रसाले के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इनके नज़दीक वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा था। इस मैदान में सर सैयद की कोशिशों का मुसबत नतीजा ये निकला कि पढ़े लिखे मुसलमानों में एक नया अदबी ज़ौक पैदा हुआ। अभी तक शहर ए उर्दू ने शायरी में फारसी लहजा और अंदाज अपना रखा था और इनके मौजू महदूद थे। उर्दू नसर ने भी कोई काबिले जिक्र तरक्की ना की थी, लेकिन नए शहरों ने मिल्लत की फलाह बहबूद और तरक्की की खातर बा मकसद शायरी की बुनियाद रखी। इसी तरह उर्दू नसर में भी तगैयर आया। 1863 में सर सैयद ने गाजीपुर में प्रेस कैम्प की और तब से मुसलमानों में तबात व अशात का सिलसिला वसी होता चला गया। जदीद तलीम के फ़रोग़ के सिलसिला में सर सैयद ने जो खिदमात अंजाम दी वो बेहद अजीम थी। मुसलमानों में अंग्रेज़ी तलीम के मुखालबत के कई सबब थे। हाल ही के नज़दीक मुसलमान अजनबी जुबान को सीखने की हलियत ना रखते थे। सफ़ा नंबर 120। क्योंकि वो عموماً جہاں کہیں بھی آباد ہوئے اپنی زبانیں اور ادب ساتھ لے کر گئے۔ کئی صدیوں میں انہوں نے اپنا ایک مخصوص تعلیمی نظام ترتیب دیا جو دینیات اور دنیاوی علوم کا عجیب و غریب مرقع تھا۔ بعد ازاں یہ تعلیمی نظام اسلام کا جز سمجھا جانے لگا۔ مسلمان اپنے تعلیمی نظام پر ہمیشہ فخر کرتے تھے اور اسے دوسرے نظاموں سے افضل خیال کرتے تھے۔ اس لیے 1835 میں جب سرکار برطانیہ نے ان کا نظام معطل کر کے انگریزی نظام تعلیم نافذ کیا تو مسلمانوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کو شبہ تھا کہ نئی تعلیم ان کے بچوں کو اسلام سے منحرف کرنے کی خاطر رائج کی گئی ہے، لہذا ہندو بچے کے برعکس مسلمان بچوں کو انگریزی سکول میں داخلے سے پہلے دینی تعلیم کی تکمیل کے لیے درس گاہ یا مکتب بھیجا جاتا، اور وہ انگریزی سکول میں ہندو بچے کی نسبت زیادہ عمر میں داخل ہوتا۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد مسلم نوجوان کے لیے کوئی باعزت ملازمت ملنے کا امکان نہ تھا، کیونکہ اس دور میں ایسی تمام ملازمتوں کے دروازے انگریزی حکومت نے مسلمانوں پر بند کر رکھے تھے۔ ویسے بھی مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں معاشی طور پر زیادہ پسماندہ تھے اور ان کے لیے نئی تعلیم کی تحصیل ممکن نہ تھی۔ حالی تحریر کرتے ہیں کہ کلکتہ، مدارس، بمبئی اور برصغیر کے دیگر بڑے شہروں کی یونیورسٹیوں میں جنہیں سرکاری امداد حاصل تھی، 1858 سے لے کر 1875 تک مسلم گریجویٹوں کی کل تعداد 20 تھی اور ان کے مقابلے میں ہندو گریجویٹوں کی تعداد 846 تھی۔ نئے تعلیمی نظام پر مسلمانوں کا بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ سیکولر یا لا دین تھا، جس کے سبب مسلمان نوجوانوں میں دہریت کے فروغ کا احتمال تھا۔ نیز وہ یہ سمجھتے تھے کہ نیا تعلیمی نظام ایک غیر ملکی اور غیر مسلم قوم کا نظام تھا جو مسلمانوں کی تمدنی اور معاشرتی روایات کا کر کے ان پر ایک اجنبی تمدن کی اقتدار ٹھونسنے کے درپے تھا۔ بہرحال 1870 میں سرکار برطانیہ نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے ان کے اعتراضات کی روشنی میں دلچسپی لینا شروع کی۔ حکومت کو فارسی اور عربی زبانوں کی اہمیت کا احساس ہوا اور تعلیمی اداروں میں ان زبانوں کو انگریزی زبان کے ساتھ پڑھائے جانے کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم تعلیمی اداروں کو دیگر غیر سرکاری تعلیمی اداروں کی طرح مالی امداد دی گئی اور مسلم طلبہ کے لیے وظائف کا انتظام کیا گیا۔ 1882 میں تعلیمی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور سفارش کی کہ ان کی تمدنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے نظام میں مناسب ترامیم کی جائیں۔ سر سید 1858 سے انگریزی زبان سیکھنے کے حامی تھے۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ جدید سائنس پر انگریزی کتب کا ترجمہ اردو میں کر دیا جائے تاکہ جدید علوم مسلمانوں کی منحوس زبان میں منتقل ہو سکے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور ترجمے کا کام شروع کیا۔ 1864 میں یہ سوسائٹی غازی پور سے علی گڑھ منتقل ہوئی اور سوسائٹی کی طرف سے ایک انگریزی رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بھی 1866 میں شائع کیا گیا جو 1895 تک جاری رہا، لیکن ترجمے کے کام اور جدید سائنس کی کتب کو اردو قلب میں ڈھالنے کی کوشش ناکام رہی۔ انگلستان میں قیام کے دوران جدید یونیورسٹیوں کے انتظام کو سمجھنے کی خاطر سر سید کیمبرج یونیورسٹی گئے۔ وہاں واپسی پر انہوں نے مسلم ایجوکیشن کانفرنس قائم کی، جس کا مقصد مسلمانوں کی دینی اور تمدنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے نصاب ترتیب دینا تھا۔ اس کے بعد روپیہ فراہم کرنے کی خاطر فنڈ کمیٹی قائم ہوئی تاکہ ایک مسلم کالج تعمیر کیا جا سکے۔ صفحہ نمبر 123، علماء کی مخالفت کے باوجود خاصا روپیہ اکٹھا ہوا۔ بالآخر 1877 میں وائسرائے لارڈ لٹن نے علی گڑھ میں اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، جسے 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا دیا گیا۔ کالج کے نصاب میں مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب، جدید سائنس اور نئے علوم کے مطالعہ کے لیے بھی انتظام کیا گیا۔ آرٹ اور سائنس کی تعلیم کے ساتھ دینیات کی تعلیم بھی لازمی تھی۔ چونکہ مسلمانوں نے سر سید کے مذہبی نظریات قبول نہ کیے تھے، اس لیے وہ دینیات کے شعبہ سے لاتعلق رہے۔ بہرحال سنی اور شیعہ طالب علموں کو ان کے عقائد کے مطابق دینیات کی تعلیم دی جاتی۔ کالج میں کھیلوں اور دیگر ادبی، معاشرتی اور ثقافتی تفریحوں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ہندو طلبہ بھی کالج میں داخل ہو سکتے تھے، ان کے لیے دینیات کا مطالعہ لازمی نہ تھا۔ کالج میں گائے کے ذبیحہ ممنوع تھا اور ہاسٹل میں کھانے کی میز پر گائے کا گوشت نہ رکھا جاتا۔ اس مرحلے پر سر سید کے سیاسی نظریات کا ذکر کر دینا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ وہ مسلمانوں کی انگریزی हाकमों के खिलाफ मुहाजराई के मुखालफ थे। इनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमान हुकूमत के साथ वफादारी का दम भरें और फायदा उठाएं, सरकारी मुलाजमतें हासिल करें या अपने आप को तलीमी और मुआशी तौर पर मजबूत करें। इस मकसद के लिए उन्होंने 1866 में एक नीम सियासी तंजीम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कायम की। अठारह सौ अठहत्तर से लेकर 1882 तक वो वायसराय की कानून साज कौंसिल के मेंबर रहे। सर सैयद की राय में मुसलमानों की गुरबत व अफलास का असल सबब इन मेंकूवत के जज्बे का फुकदान और बाहसियत मजमू अपनी मुआशी हालत सुधारने की तरफ बेहिसी या बेपरवाही था। इन्होंने अपनी तकरीरों में कई बार मुसलमानों को तजारत और सनत के मैदानों में दिलचस्पी लेने की तरगीब दी और मुस्लिम काश्तकारों और जमींदारों को काश्तकारी के जदीद तरीके अपनाने की तरफ तवज्जो दिलाई। 1882 में लुधियाना के मुस्लिम तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क में तमाम वो अफराद जो मुसलमान हैं, इनका तलक एक मखसूस कौम या मिलत से है। 1883 में उन्होंने सीपी के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल की मुखालफत की। इनका मौकफ ये था कि हिंदुस्तान बजाय खुद एक बरआजम है जिसमें कई मिलतें आबाद हैं जिनका तलक मुख्तलिफ मजहबों और तमदनों से है। इनमें सियासी तौर पर यकजहती है ना मुआशी तौर पर, लिहाजा इन हालात में यहाँ किसी भी किस्म की नुमाइंदा हुकूमत का क्याम किसी कई सियासी और माशी मसाइल खड़े कर देगा। इनकी राय में जब तक हिंदुस्तान में मजहबी इख्तलाफात और माशी तजादात ख़त्म नहीं हो जाते, यहाँ नुमाइंदा हुकूमत के क्याम का मतलब ये होगा कि अक्सरियत हमेशा अकलियत को सरनगु रखेगी और जमहूरियत के नफाज के जरिए नतीजा जमहूरियत ही के तकाजों की मुकम्मल नफी होगा। सर सैयद के ख्याल में हिंदू अक्सरियत जब चाहे मुस्लिम अकलियत को ख़त्म कर सकती थी क्योंकि मुल्क की अंदरूनी तजारत का मला हिंदुओं के हाथ में थी और बैरूनी तजारत पर अंग्रेज हावी थे। 1885 में मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। इसके एक साल बाद यानी 1886 में सर सैयद ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस कायम की क्योंकि इनके नज़दीक मुसलमानों के लिए मुल्की सियासत में हिस्सा लेने की बजाय जदीद तलीम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराना जरूरी था। 1887 में उन्होंने लखनऊ में अपनी मशहूर तकरीर में मुसलमान को कांग्रेस में शामिल होने से मना किया। हिंदू तलीमी और माशी तौर पर मुसलमानों से बहुत आगे निकल चुके थे। सफ़ा नंबर 124। इस जमाने में मुल्क की इंतजामिया या अदलिया के महकमों में जो भी असामियां हिंदुस्तानियों के लिए मखसूस थी, इनमें से अक्सर पर हिंदू फाइज थे। इस लिहाज से कांग्रेस के क्याम का मकसद बुनियादी तौर पर हिंदू मतवसत तबका के लिए ज्यादा तादाद में सरकारी मुलाजमतों का हसूल था। सर सैयद ने मुसलमानों पर वादे किया कि तादाद में वो हिंदुओं से बहुत कम है, नीज तलीमी और माशी एतबार से भी वो इनका मुकाबला करने से कासर हैं। इसलिए अगर हिंदुस्तान में नुमाइंदा हुकूमत कायम हो गई तो तलीमी और माशी तौर पर पसमानदा मुस्लिम अकलियत हमेशा हमेशा के लिए हिंदुओं अक्सरियत की दस्ते नगर हो जाएगी। हिंदुस्तान में हिंदू मतवसत तबके के लिए ज्यादा तादाद में सरकारी मुलाजमतों की फराहमी की खातर एहतजाज 1876 से शुरू हुआ जब कलकत्ता में सरिंदर नाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन कायम की। दूसरे लफ्जों में इस इज्तिमा की इब्तदा बंगाली हिंदुओं ने की जो सबसे पहले नई तलीम और तमदन के जेरे असर आते थे। बंगाल के हिंदू प्रेस ने सर सैयद और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। 1885 में कांग्रेस के क्याम के कुछ अरसे बाद यह तंजीम बीजी तलक के जेरे क्यादत आ गई। तलक एक नहायत मोहतसब और जंगजू किस्म के सियासी कारकुन थे। इनकी तकरीर मुसलमानों के खिलाफ जहर से भरी होती थी। इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए मरहटों की एक पुरानी रस्म इस सर नौ राइज की जिसके जरिए शिवाजी को खराज अकीदत पेश किया जाता है। इसी तरह उन्होंने गाय के जीबा के इब्तना के लिए सोसाइटी कायम की और हुकूमत के नाफज करदा इस कानून के खिलाफ मुनज़म मुजाहरा किया कि बवक्त नमाज मसाजिद के सामने ढोल ढमकाना बजाया जाए। तलक की निगाह में मुसलमान एक गैर मुल्की अंसर था जिसका कलम कमा करना या जिसे हिंदुस्तान की सरजमीन से खारिज करना इस हद जरूरी था। इन सब इकदामात का नतीजा ये हुआ कि 1893 में बम्बई में हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया जिसमें बहुत से मुसलमानों की जानें तलफ हुई। गोया इब्तदा ही से कांग्रेस के जरिए हिंदुस्तानी कौमियत के जज्बे की तहशीर को दरअसल हिंदू कौम परस्ती के फरोह के मुतरादब समझे जाने लगा और स्वराज आजादी से मुराद हिंदू राज ली जाने लगी। इन हालात में हिंदू अक्सरियत के मुकाबले में मुसलमानों के लिए मुदाफाना रवैया अख्तियार करने के सिवा कोई और चारा ना था। इस जमाने की नीम सियासी मुस्लिम तंजीमें इसी मुदाफाना नुक्ता नजर से वजूद में लाई गईं। 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ की मोहम्मडन सोसाइटी और 1877 में सैयद अमीर अली की कलकत्ता वाली सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन का मकसद मुसलमानों के मुफादात का तहफ्फुज़ था। सर सैयद ने कांग्रेस के मुकाबला में अलीगढ़ में 1888 में यूनाइटेड इंडिया पीटर पियाटक एसोसिएशन भी कायम की थी, लेकिन 1897 में बम्बई के हिंदू मुस्लिम फसाद के बाद उन्होंने इस तंजीम को तोड़कर इसकी जगह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया कायम की। सर सैयद 1867 के उर्दू हिंदी तनाज़ा से भी बेहद मुतासर हुए। हिंदुस्तान में फारसी और अरबी जबानों की मुअत्तली के बाद 1835 से उर्दू अदालतों की जुबान के तौर पर राइज थी। 1867 में बनारस के मोहतसब हिंदुओं ने उर्दू के खिलाफ तहरीक चलाई कि इस मुस्लिम जुबान का खात्मा करके हिंदी जुबान राइज की जाए। इस मकसद के हसूल के लिए यूपी, बिहार और दीगर सूबों में हिंदुओं ने अंजुमने कायम की। हयात जवेद में हाली तहरीर करते हैं कि हिंदुओं के उर्दू के खिलाफ इस तासब से सर सैयद बेहद रंजीदा हुए और इसके बाद खसूसन मुसलमानों के मिली मुस्तबिल की तर्ज पर सोचने लगे। सफा नंबर 127, उन्होंने शेक्सपियर कमिश्नर बनारस से पेशन गोई के तौर पर कहा कि अब हिंदुओं और मुसलमानों में इतिहाद का ख्वाब कभी शर्मिंदा तबीर ना होगा। इस वक्त गो बज़ाहिर इनके इख्तलाफात कम है, लेकिन जो जो पढ़े लिखे तबके की तादाद में इजाफा होगा, इख्तलाफात बढ़ते चले जाएंगे और आपस में इतमाद की अदम मौजूदगी इनमें नफरत व इफ्तराक का बीज बो देगी। इनके बाद आने वाली इस हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगे। बिहार में उर्दू की बजाय बहारी राइज कर दी गई। दीगर सूबे में हिंदुओं ने हिंदी राइज करने के लिए अपनी मुहिम जारी रखी, लेकिन सर सैयद तादम मरग उर्दू जुबान की हमायत में लिखते रहे। 1884 में सर सैयद ने पंजाब का दौरा किया और मुसलमानों को नई तलीम के हसूल की अहमियत का एहसास दिलाने के लिए कई तकरीरें की। सर सैयद को पंजाब में जिन अफराद पर एतमाद था और जिनका वह एहतराम करते थे, इनमें इकबाल के उस्ताद सैयद मीर हसन भी थे। 1895 में जब मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इजलास लाहौर में हुआ तो इसमें उन्होंने शिरकत की। इकबाल की इब्तदाई तालब इल्माना जिंदगी पर सैयद मीर हसन 1844 ता 1869 की शख्सियत हावी है। सैयद मीर हसन एक रोशन फिक्रे अहले इलम थे, जो मसल्ला दीन और मसला दुनिया को एक साथ पेशे नजर रखकर शागिर्दों की तरबियत करते थे। वो ना सिर्फ अलूम इस्लामी और अरफान व तसूफ से आगाह थे, बल्कि अलूम जदीदा अदबियात, लसानियात और राजियात के भी माहिर थे। इनके पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि अपने शिगिर्दों में उर्दू, फारसी और अरबी का सही लसानी जौक पैदा करते थे। इन्हीं अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी के हजारों अशआर अजबर थे। फारसी के कई शेर की तशरीह करते वक्त वह इसके मुतरादफ उर्दू और पंजाबी के 20 अशआर पढ़ डालते ताकि इसका मतलब पूरी तरह जहन नशीन हो जाए। अपनी तदरीसी मसरूफियात के बावजूद मुसलसल और मुतवातर मुतालिया भी जारी रखते। वो एक रासकुल अकीदा और इबादत गुजार मुसलमान थे, हाफिज़े कुरान थे और कुरान मजीद से बेहद शगफ रखते थे। मुजस्म इखलाक थे, आमतौर पर नहायत फसीह और सुलझी हुई उर्दू में बातचीत करते। सादगी, संजीदगी, कनात, इस्तगना, तवाज़े, खुशतबी और आसान बंदी इनके मिजाज की नुमायां खसूसियत थी। इन्हीं शगीर्द शाह साहब कहकर खताब करते। इनका ममूल था कि नमाज तहज्जुद या नमाज फजर से फरागत पाकर हर रोज सबसे पहले कब्रिस्तान जाते और अपने अज्जा व अहबाब की कब्रों पर फातिहा पढ़ते। शगीर्द इन्हीं कब्रिस्तान ही में आ मिलते और वापसी पर सारा रास्ता सबक लेते घर पहुँच कर फिर तदरीस में मसरूफ हो जाते। स्कूल से के वक़्त से बेशतर जल्दी जल्दी खाना खाते और स्कूल चल देते। रास्ता में भी शिगिर्द साथ लगे रहते थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाते, शाम को घर आते और तदरीस का सिलसिला रात तक जारी रहता। सौदा सल्फ बाजार से खुद लाते, इस आमदरफ्त में भी शिगिर्द साथ ना छोड़ते। सैयद मीर हसन की जिंदगी नहायत सादा और गरीबाना थी। वो ममूली मगर साफ सुथरा लिबास जेब तन करते तमाम उम्र स्कॉच मिशन स्कूल ही से वाबस्ता रहे, जहाँ इनकी तनख्वाह इनकी वफात तक 120 रुपए से जायद ना होने पाई। सैयद मीर हसन ने इकबाल को अरबी, फारसी और उर्दू अदबियात, इल्मो हिकमत, तसूफ वगैरह की तलीम देकर इनके दिल में अलूम कदीमा और इस्लामिया के लिए बेहद शफदगी पैदा कर दी। इकबाल की अपनी तबीयत की सादगी, कनात, अस्तगना, जराफत और नुक्ता संजी सब सैयद मीर हसन के मिजाज का अक्स थी। जब तक वो जिंदा रहे, इकबाल इनकी खिदमत में हाजिर होकर अपने इल्मी मसाइल में से इनसे हदायत व रहबरी लेते रहे। बाज़ औक़ात इन्हीं मुताले के लिए नई कुतब अरसाल करते थे। इकबाल बारहा ये कहते हुए सुने गए कि शाह साहब की सोबत में बैठकर इत्मीनान खातर नसीब होता है और फिक्रमंदी दूर हो जाती है। इकबाल इनका बेहद एहतराम करते थे, यहाँ तक कि इनके रूबरू इन्हें कभी शेर सुनाने की जुर्रत ना हुई। इस सिलसिले में इकबाल ने अपने लड़कपन का एक वाक्य बयान किया है कि शाह साहब के सामने सिर्फ एक मरतबा इनकी जुबान से एक मिसरा निकल गया, और वो भी इतफाकी तौर पर। हुआ यूं कि शाह साहब किसी काम के लिए घर से निकले, एक बच्चा एहसान नामी जो इनके अजीजों में से था, इनके हमरा था। शाह साहब ने फरमाया, इकबाल इसे गोद में उठा लो। इकबाल ने इसे उठा तो लिया, मगर थोड़ी दूर चलकर थक गया। चुनचा उन्होंने एहसान को किसी दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया और खुद सस्ताने लगे। शाह साहब बहुत आगे जा चुके थे, इकबाल को ना पाकर लौटे और इनके करीब पहुंच कर कहा, इसकी बर्दाश्त भी दुश्वारी है। इकबाल से बेख्तियार निकल गया, तेरा एहसान बहुत भारी है। इकबाल को सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक का एहसास सैयद मीर हसन की वसासत से हुआ था। इसी निस्बत पर बिना पर बाद में जब इकबाल की मुलाकात सर सैयद के पोते सैयद रास मसूद से हुई, तो इनके गहरे दोस्त बन गए और इनसे वालहाना मोहब्बत करने लगे। 1898 में जब सर सैयद की वफात का तार सैयद मीर हसन को मिला, तो वो स्कूल जा रहे थे। रास्ते में इकबाल मिल गया, जो इन दिनों तातीलात गुजारने के लिए लाहौर से सियालकोट आए हुए थे। सैयद मीर हसन ने इन्हीं सर सैयद की रहलत की इतला दी और फरमाया कि मादा तारीख निकाल दे। इकबाल करीब ही किसी दुकान पर जा बैठे और थोड़ी ही देर में मादा तारीख निकाल दिया। सफा नंबर 130। सैयद मीर हसन ने स्कूल से वापसी पर जब ये मादा सुना तो इसकी तारीफ की, फिर कहा कि मैंने भी एक मादा निकाला है। 1905 में इकबाल ने इंग्लिस्तान जाते हुए दिल्ली में जो नज़म इल्तिजाए मुसाफ़र ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर पढ़ी थी, इसमें सैयद मीर हसन के मुतल्लक ये अशआर हैं। वो शमा बारगा ख़ानदाने मुर्तज़वी रहेगा मसले हरम जिसका आस्तान मुझको, नफस से जिसके खुली मेरी आरजू की कुली, बनाया जिसकी मुरव्वत ने नुक्ता दाम मुझको, दुआ ये कर के खुदावंद आसमान व ज़मीन करे फिर इसकी ज़ियारत से शादमा मुझको। इकबाल को 1923 में सर के खिताब की पेशकश की गई तो उन्होंने गवर्नर पंजाब से कहा कि जब तक इनके उस्ताद सैयद मीर हसन की इल्मी खिदमात का इतराफ़ ना किया जाएगा, वो खिताब कबूल ना करेंगे। गवर्नर ने पूछा कि क्या सैयद मीर हसन की कोई तसनीफ़ है? इकबाल ने जवाब दिया, मैं खुद इनकी तसनीफ हूँ। चुनाचा इकबाल के खिताब के मौके पर सैयद मीर हसन को भी शम्सुल उलमा का खिताब मिला। सैयद मीर हसन की वफात पर इकबाल ने मादा तारीख निकाला। इकबाल ने सैयद मीर हसन के मुतलक अपने जज्बात का इजहार यूं भी किया है, मुझे इकबाल इस सैयद के घर से फैज पहुंचा है, पले जो इसके दामन में वही कुछ बनकर निकले हैं। इकबाल की सियालकोट में ज़िंदगी से मुतलक जो मवाद मिलता है, इसकी बिना पर इनकी हयात के अवायली दौर का किसी हद तक तयन किया जा सकता है। शेख अता मोहम्मद की दूसरी शादी के वक़्त इकबाल 5वीं जमात में पढ़ते थे, इनकी भावज बयान करती हैं कि इकबाल को शेरों से बड़ी दिलचस्पी थी, नीज इनकी आवाज़ भी बहुत शीरीन थी। वह बाजार से मंजूम किस्से खरीद लाते और घर की औरतों को खुश हानी से पढ़कर सुनाते। इसी तरह इनका बयान है कि इकबाल छोटी उम्र ही से बेहद जहीन थे, पढ़ाई का बड़ा शौक था और सख्त मेहनत करते थे, यहाँ तक कि रात गए तक पढ़ते रहते। एक दफा निसफ शब के करीब बेजी की आंख खुल गई, देखा कि इकबाल लैम्प के पास बैठे स्कूल का काम कर रहे थे। बेजी ने इन्हीं 2-3 मरतबा पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना पाया। फिर उन्होंने उठकर बेटे को झुंझोड़ते हुए कहा कि इस वक्त आधी रात को क्या पढ़ रहे हो, सो जाओ। इकबाल ने ऊँगते हुए जवाब दिया, बीजी सोया हुआ ही तो हूँ। वो पढ़ते पढ़ते सो गए थे। मुसद्दका रवायात से भी यही साबित होता है कि वो जहानत में अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बहुत आगे थे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो किताब के कीड़े थे, बल्कि इन्हीं खेल कूद का भी शौक था। शरारतें भी करते थे और बड़े हाजिर जवाब थे। इनके कबूतर पालने, पतंग उड़ाने और अखाड़े में वर्जिश करने के शौक से मुतल्लिक तो कई शहादतें मौजूद हैं। इन मशागल में इनके बचपन के दोस्त सैयद मीर हसन के फरजान सैयद मोहम्मद तकी और लालू पहलवान भी बराबर के शरीक होते थे और इनके वालिद मना ना करते थे। कबूतर पालने का शौक तो इन्हीं आखिर दम तक रहा। वह मकान की छत पर घंटों खामोश बैठे कबूतरों की परवाज से लुत्फ अंदोज होते रहते। सफा नंबर 132। इनकी उड़ान से इनकी किस्म या नस्ल पहचान लेने का तरीका इन्होंने लालू पहलवान से सीखा था। इकबाल के लड़कपन के ज़माने में इनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद सियालकोट से बाहर तैनात थे, गो इनकी अहलिया सियालकोट ही में रहती थी। शेख नूर मोहम्मद के ख़ानदान में दो बच्चियों यानी करीम भी और जैनत भी का इजाफा हो गया था। घर में ज़्यादा तादाद औरतों की थी। ज़ाहरा इकबाल ज़िंदगी के इस दौर में अपने वालदैन की तवज्जो का मरकज़ थे। वो माँ से बेहद मोहब्बत करते थे और बाप से इन्हीं जिस किस्म की तरबियत मिली इसके मुतल्लक दो वाक्यात की तफसील तो इकबाल के अपने अल्फाज में हम तक पहुँची है। पहले वाक्य का जिक्र अब्दुल मजीद सालक और अतिया फैजी की कुतब में मौजूद है, लेकिन दूसरा वाक्य इकबाल ने रमूज बेखुदी में नज़म किया है। जिक्र इकबाल में सालक लिखते हैं कि इन इकबाल ने खुद बताया, जब मेरी उम्र कोई 11 साल थी, एक रात मैं अपने घर में किसी आहट के बाइस सोते से बिदार हो गया। मैंने देखा कि मेरी वालदा कमरे की सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठा और अपनी वालदा के पीछे चलते सामने दरवाजे के पास पहुंचा जो अध खुला था और इसमें से रोशनी अंदर आ रही थी। वालदा इस दरवाजे से बाहर झांक रही थी। मैंने आगे बढ़कर देखा के वालद खुले सहन में बैठे हैं और एक नूर का हल्का इनका हाता किए हुए है। मैंने वालद के पास जाना चाहा, लेकिन वालदा ने मुझे रोका और समझा बुझाकर फिर सुला दिया। सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले वालद साहब के पास पहुंचता कि इनसे रात का माजरा दरियाफ्त करूं। वालदा पहले ही वहां मौजूद थी और वालद इन्हीं अपना एक रोया सुना रहे थे जो रात उन्होंने बहालत बेदारी देखा। वालद ने बताया कि काबुल से एक काफिला आया जो मजबूरन हमारे शहर से कोई 20-25 मील के फासले पर मुकीम हुआ है। इस काफले में एक शख्स बेहद बीमार है और इसकी नाजुक हालत ही की वजह से काफला ठहर गया है, लिहाजा मुझे इन लोगों की मदद के लिए फौरन पहुंचना चाहिए। वालद ने कुछ ज़रूरी चीज़ें फराहम करके तांगा मंगवाया, मुझे भी साथ बिठा लिया और चल दिए। चंद घंटों में तांगा इस मुकाम पर पहुंच गया जहां कारवां का डेरा था। हमने देखा कि वो काफला एक दौलतमंद और बाअसर खानदान पर मुश्तमिल है जिसके अफराद अपने एक फर्द का इलाज कराने पंजाब आए थे। वालद ने तांगे से उतरते ही दरियाफ्त किया कि इस काफले का सलार कौन है। जब वो साहिब सामने आए तो वालद ने कहा कि मुझे फौरन मरीज के पास ले चलो। सलार बेहद मुतजब हुआ कि ये शख्स कौन है जो हमारे मरीज की बीमारी से मुतला है और फौरन इसके पास भी पहुंचना चाहता है, लेकिन वो मरउबियत के आलम में वालों को अपने साथ ले गए। जब वालद मरीज के बिस्तर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि मरीज की हालत बहुत खराब है और इसके बाद अजा इसकी मरज की वजह से हौलनाक तौर पर मुतासर हो चुके हैं। वालद ने एक चीज निकाली जो बजहर राख नजर आती थी। वो राख मरीज के गले सड़े अजा पर माल दी और कहा कि अल्लाह ताला के फजल से मरीज को शफा हासिल होगी। इस वक्त तो ना मुझे यकीन आया ना मरीज के लवाकीन ही ने इस पेशन गोई को अहमियत दी, लेकिन 24 ही घंटे गुजरे थे कि मरीज को नुमाया फाका हो गया और लवाहकीन को यकीन होने लगा कि मरीज सेहतयाब हो जाएगा। इन लोगों ने वालद साहब की खिदमत में एक अच्छी खासी रकम फीस के तौर पर पेश की जिसको वालद ने कबूल ना किया और हम लोग वापस सियालकोट पहुंच गए। चंद रोज बाद वो काफिला सियालकोट में वर्द हो गया और मालूम हुआ कि वो मायूस और इलाज मरीज शफा हो याब हो चुका है। अतिया फैजी ने अपनी अंग्रेजी तसनीफ बानवान इकबाल में इस वाक्य को बाइना इसी अंदाज में तहरीर किया है। वो बयान करती हैं कि इकबाल के वालिद ने किसी वली की रहनुमाई में कई माह तन्हाई में गुजारे थे और इन्हीं जो कुछ हासिल हुआ बेटे को दिया। मालूम होता है कि शेख नूर मोहम्मद सुल्तानुल आरफीन हजरत काजी सुल्तान महमूद दरबार अवान शरीफ के मुरीद थे जो कादरिया सिलसिला से तल्लक रखते थे। इसी बिना पर इकबाल भी बचपन से सिलसिला काजिया में बैत किए हुए थे। ऐन मुमकिन है कि शेख नूर मोहम्मद ने अपने कवायद रूहानी के नशोनुमा के लिए चिल्ला कशी की रियाजत भी की हो। बाज़ औक़ात इकबाल खुद भी बारी के बुखार के मरीजों को पीपल के पत्तों पर कुरानी आयात कलम से लिख कर देते थे जिसके चाटने से मरीज का बुखार उतर जाता था। अपने बचपन में राकम ने इन्हीं पीपल के पत्तों पर ऐसा तहरीर करते देखा है। इस किस्म के रूहानी इलाज की करने की इजाज़त मुमकिन है क्योंकि उन्होंने अपने वालद से हासिल की हो, लेकिन शेख नूर मोहम्मद बकायदा बैत लेकर किसी को मरीज ना बनाते थे। इनकी लोहे मज़ार पर इकबाल के तहरीर करदा कता तारीख़ वफात में इन्हीं पीरो मुर्शद इकबाल कहा गया है, मगर इस रवायत में कोई सदाकत नहीं। कि इकबाल अपने वालद से बैद थे। अलबत्ता मौलवी रंग में इकबाल की निगाह में अपने वालद का वही रुतबा था जो एक मुरीद की नज़र में मुर्शिद का होता है। सालक तहरीर करते हैं कि जब बाप की यकफियत हो और इसके जानने वालों का हल्का भी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो तो ज़ाहिर है इकबाल का जहन वजदानी कफियत के लिए किस कदर आमादा होगा। इनकी राय में गलबन इसी बिना पर इकबाल ने अपनी इल्मी तहकीक के बाद मबाद तबीयात का मौजू मुंतखब किया। खलीफा अब्दुल हकीम ने अपनी किताब फिक्रे इकबाल में इकबाल के आरफ बाप के गैर मामूली रूहानी मुशाहदात का जिक्र करते हुए बयान किया है कि गजाए रूह इकबाल को शुरू ही से जिस्मानी रिजक के साथ बाप से मिलती रही और इकबाल अपने आखिरी उम्र में कहा करते थे कि मैंने अपना जाविया हयात फलसफियाना जस्तजू से हासिल नहीं किया, जिंदगी के मतलब एक मखसूस जाविया निगाह वर्षा में मिल गया था, बाद में मैंने अक्ल व इस्तदलाल को इसी सबूत में सरफ किया है।